जयदेवला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहं नमो सीतानं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, पणमियनिसङ्कमणो पच्चूहसमुद्रसङ्कमे जिनचलने बन्दकमहाहियारम् वोक्षं जत्थेव संकमोलीनो। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। आठवीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 64 पर आ गए, 64।
ये कल आपने शाम को बोला कि क्रिस्टल एशिया में क्रोध का काल ज्यादा रहता है, तो वो क्या हमेशा क्रिस्टल एशिया में जो जीव रहता है उसका क्रोध का उदय का काल ज्यादा होता है? और मान
की बात है,
देखो आपने प्रश्न जो पूछा कि क्या कृष्णल एशिया में क्रोध का ज्यादा काल रहता है, ऐसा नहीं है।
हाँ।
नारकी के लिए बस
नहीं, वो तो नारकी के लिए बराबर थी, पर वहाँ पे कृष्णल एशिया होती है, अन्यथा कृष्ण नील कपोत।
तो नारकी के लिए रूल लगाओ, कृष्णल एशिया के लिए मत लगाना, क्योंकि कृष्णलेशा तो तिर्यंश
मनुष्य में भी होगी है। तो मनुष्य में वो नहीं होगा,
नहीं होगा की बात नहीं है, वहाँ वो रूल नहीं लगेगा। रूल अलग अलग गतियों की अपेक्षा से लगा है, कौन से गति में किस कषाय का काल बड़ा है।
देव में उल्टा है,
देवों में लोभ का काल ज्यादा है, मनुष्यों में मान का काल ज्यादा है, तिर्यंशों में माया का काल ज्यादा है, वो कहेंगे। अभी ये गति की अपेक्षा लगाना है, क्योंकि हमें वहाँ संख्या निकालनी थी, कषाय वाले जीवों की संख्या निकालनी है, तो जहाँ जिसकी मुख्यता है, जिसका काल ज्यादा है, तो उनकी संख्या निकालेंगे वहाँ पर। वो अपना ये प्रकरण हुआ नहीं ना, अधूरा ही हुआ है,
आ जाएंगे तो पूरा करेंगे।
हाँ,
अच्छा कल आप थे ही नहीं ना वहाँ?
मैं तो चार दिन से नहीं आ रहा हूँ ना।
हाँ, इसीलिए आपको ऐसा प्रश्न है। कैसे अच्छी बात,
धीरे से इतना उपयोग नहीं लगता है जितना।
हाँ, देखो 64 नंबर पृष्ठ पर आए हम, अभी हमारा कौन सा प्रकरण याद है? सन्निकर्ष अधिकार शुरू हुआ है। सन्निकर्ष का अर्थ है जब जो मिथ्यात्व का संक्रामक है उसके साथ अन्य प्रकृतियों की क्या पोजीशन होगी, क्या उसका संक्रमण कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक एक प्रकृति के साथ उसका संबंध बताएंगे। 63 पृष्ठ पर से हम देखते हैं, वहाँ कहा था मिथ्यात्व का संक्रामक, सम्यक मिथ्यात्व का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। तो कदाचित असंक्रामक कहने की क्या, क्योंकि जो जो मिथ्यात्व का संक्रमण कहाँ होता है, तो सम्यक्त्व में होता है। तो जो मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा है वो सम्यक मिथ्यात्व का भी तो संक्रमण करता है कि नहीं करता? हाँ, परंतु प्रथम उपशम सम्यक्त्व के पहले समय में जहाँ सम्यक मिथ्यात्व की नई सत्ता तैयार होती है उसके लिए कंडीशन है। यदि उद्वेलना वो पूरी नहीं हुई है, उद्वेलना संक्रमण चल रहा है, सत्ता में वो अधिक मात्रा में है निषेक, और ऐसा जीव अगर उपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है उपशम योग्य काल में, तो उसके उसी पहले समय से सम्यक मिथ्यात्व का भी संक्रमण, वो तो संक्रमण चल ही रहा था ना वहाँ खाली रूप से जो कुछ है, तो उसका भी वहाँ संक्रमण होगा, क्योंकि उसकी सत्ता है, उसको उद्वेलना नहीं कहेंगे, तभी सीधा संक्रमण होगा उसका सम्यक प्रकृति में, क्योंकि उसकी सत्ता है। अब ये हमने कब, जो आवली में प्रवेश कर चुका है उद्वेलना में, या जो अनादि मिथ्या दृष्टि है 26 प्रकृति की सत्ता वाला, वो यदि सम्यक तो प्राप्त करता है प्रथम उपशम सम्यक, तो उसके पहले समय में सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होता, क्योंकि उसकी सत्ता तो अभी अभी बनी है। इसलिए यहाँ लिखा है कि मिथ्यात्व का संक्रामक सम्यक मिथ्यात्व का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। ये असंक्रामक के लिए मात्र वही एक कंडीशन है, प्रथमोक्षम सम्यक को उत्पन्न होने का पहला समय। अन्यत्र सर्वत्र जहाँ मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का भी है ही। क्षपणा में तो मिथ्यात्व का पहले रुक जाएगा और सम्यक मिथ्यात्व का भी आगे और चलेगा अंतर्मूर्त तक। अब उसके बाद हमने पढ़ा था वह सम्यक्व का असंक्रामक है, मिथ्यात्व का संक्रामक जीव सम्यक्व का असंक्रामक है, क्योंकि मिथ्यात्व का संक्रमण सम्यक दृष्टि करते हैं और सम्यक्व का संक्रमण मिथ्या दृष्टि करते हैं, तो एक साथ दोनों का संक्रमण नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़ा था उसके उसके का अर्थ क्या,
मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा है,
मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले के अनंतानुबंधी चतुष्क की कदाचित सत्ता है कदाचित सत्ता नहीं है। तो कदाचित सत्ता नहीं है वाला कौन सा जीव होगा,
विषय,
जिसने विषय योजना पूरी कर दी है उसके मिथ्यात्व का संक्रमक है वो, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, परंतु उसने अनंतानुबंधी की विषय योजना पूरी कर दी है तो उसके अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कदाचित सत्ता नहीं, नहीं सत्ता जिनकी नष्ट हो चुकी है उनको लेना यहाँ पर, उसके बाद जिसकी सत्ता नहीं है ऐसा ही जीव लेना है। आवली में प्रविष्ट वाले की तो सत्ता है, बाद में कहेंगे जिसकी सत्ता है उसमें संक्रामक भी है और असंक्रामक भी, वो तो बाद में ऑप्शन देंगे, पहले तो कहेंगे किसी की सत्ता है किसी के है ही नहीं, जिनकी विषय योजना पूर्ण हो चुकी है उनके तो सत्ता ही नहीं है, एक बात। फिर क्या कहेंगे, यदि सत्ता है तो मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले यानी जो सम्यक दृष्टि है यदि उनके अनंतानुबंधी की सत्ता है तो क्या वे संक्रामक है कि नहीं है, तो कहते संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। क्यों, विषय योजना में जिन्होंने आवली में प्रवेश कर चुका है वो सत्ता होते हुए भी असंक्रामक है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। अनंतानुबंधी के असंक्रामक दो बार होते हैं, एक तो विषय योजना में जब आवली में प्रवेश करते हैं तब, और जो संयोजना करने पर पहली जो बंधावली है काल तब, विषय योजना के वहां तो एक समय कम आवली काल तक और बंधावली में तो पूरी आवली तक। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, अभी आगे का सूत्र पढ़ेंगे। शेषाणम एक विषय कम्माणम सिया संकामो सिया असंकामो, वह शेष 21 प्रकृतियों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। मिथ्यात्व का संक्रमण तो सारे सम्यक दृष्टि करते हैं, तो यहाँ और जो 21 प्रकृतियों का संक्रमण तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सबको ही करते हैं, फिर भी उनके असंक्रामक कब हो सकते हैं, उपशम श्रेणी में, शपक श्रेणी में होगी कि नहीं होगी, वह मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं है क्योंकि शायद सम्यक दृष्टि क्षपक श्रेणी चलेगी। देखो उन्होंने देखा ना, वह शेष 21 प्रकृतियों का कदाचित संक्रामक है कदाचित असंक्रामक है। यहाँ भी पूर्ववत अधिकारवश मिच्छत्तस्य संकामो पद का संबंध कर लेना चाहिए। बात तो मिथ्यात्व का संक्रामक की बात चल रही है, उसमें अन्य प्रकृतियों की क्या पोजीशन है, संक्रमण कर रहे कि नहीं कर रहे उसकी बात बता रहे, शंका ये तो छोड़ने वाला थोड़े ही है। मिथ्यात्व का संक्रामक जीव उक्त 21 प्रकृतियों का असंक्रामक कैसे है? समाधान, उक्त 21 प्रकृतियों का सर्वोषम सर्वोपशम चाहिए। सर्वोपशम हो गया है पर नहीं, वो है ना ऊपर, सॉरी हाँ मैंने नीचे डाला वो सर्वोपशम, फिर से पढ़ती हूँ। उक्त 21 प्रकृतियों का सर्वोपशम हो जाने पर वह उनका असंक्रामक होता है। जब इनके उपशम होता है 21 प्रकृतियों का अपने अपने जगह पर, तब उनका तो असंक्रामक हो गया।
यहाँ पे मिथ्यात्व का पहले उपशम करेगा और दर्शन में होने का पहले उपशम करेगा।
अभी उसी की चर्चा चल रही है।
हाँ।
चर्चा उसी की आएगी। यदि कहा जाए कि जिन प्रकृतियों का सर्वोपशम हो गया है उनका भी संक्रम संभव है, सो यह बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था उपशम श्रेणी में चारित्र मुनि की जिनका सर्वोपशम हो गया है उनका संक्रमण भी नहीं होता। दर्शन मुनि में ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि प्रथम उपशम सम्यक्त्व के काल में दर्शन मुनि का संक्रमण हमने देखा था, मिथ्यात्व का संक्रमण और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण वहां तो होता है, परंतु चारित्र मुनि की जहाँ सर्वोपशम होता है वहां जिनकी पूरी उपशमना हो गई है उनका वहां संक्रमण नहीं होता। इसी की अभी शंका समाधान में चर्चा चलेगी। तो कहते यदि कहा जाए कि जिन प्रकृतियों का सर्वोपशम हो गया है उनका भी संक्रम संभव है, सो यह बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। शंका, यदि ऐसा है तो मिथ्यात्व का भी वहां संक्रम मत हो, क्योंकि मिथ्यात्व भी उपशमित है, द्वितीय उपशम चल रहा है, क्योंकि उपशांत पने की अपेक्षा उनसे इसमें कोई विशेषता नहीं है। ये प्रश्नकार का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? यहाँ भी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति तीनों का एक साथ उपशम करके द्वितीय उपशम सम्यक प्राप्त किया है, तो वही कंडीशन चारित्र मुनि में है, वही दर्शन मुनि में है, तो उसका भी संक्रमण होता है ऐसा मत कहो, ये इसका कहना है। समाधान, नहीं, क्योंकि दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियों में उनका उदय में न आना ही उपशम है, यह अर्थ लिया गया है। विशेषार्थ, सूत्र में यह बतलाया है कि जो मिथ्यात्व का संक्रामक है, इसके क्या सिद्ध होता है कि वहां पर भी मिथ्यात्व का संक्रामक है, उपशम श्रेणी में भी मिथ्यात्व का संक्रामक है, परंतु जिसकी जिसकी चारित्र मुनि की उपशम ना हुई है उसका संक्रामक नहीं है। हाँ, इसको उसको उपशम कहा, इसको सर्वोपशम कहा। विशेषार्थ, सूत्र में यह बतलाया है जो मिथ्यात्व का संक्रामक है वह कदाचित अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क आदि 21 प्रकृतियों का संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक। जब तक इन 21 प्रकृतियों का उपशम नहीं होता तब तक संक्रामक है, और उपशम हो जाने पर असंक्रामक है। इस पर यह शंका हुई, जो द्वितीयोपशम समय दृष्टि 21 प्रकृतियों का उपशम करता है उसके दर्शन मोहनीय त्रिक का भी उपशम रहता है, अतः जैसे उसके 21 प्रकृतियों का संक्रम नहीं होता वैसे मिथ्यात्व का भी संक्रम नहीं होना चाहिए, इसलिए मिथ्यात्व का संक्रामक उक्त 21 प्रकृतियों का असंक्रामक भी है यह कहना नहीं बनता है। ये तो शंका कर की शंका है, जो हमारे मन में भी ऐसी शंका उत्पन्न होती है, इसीलिए तो आचार्य ने शंकाकार के मुख में ये डालकर स्वयं लिखा है ना, यहाँ कौन सी शंका उपस्थित हो सकती है, इसको सोचकर उसके प्रश्न डाले। इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि दर्शन मुनि की तीन प्रकृतियों का उदय में न आना यही उनका उपशम है, अतः उनका उपशम रहते हुए भी संक्रम बन जाता है। इसलिए चूर्णी सूत्रकार ने जो यह कहा है, पहले भी हमें प्रश्न उठा था कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व में ही बात होती है कि द्वितीयोपशम में भी होती है, पहले प्रश्न आया था ना, तो तभी हमने कहा यहाँ तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात की है, अब यहाँ स्पष्ट शब्दों में द्वितीयोपशम की भी बात लिख ली। इसलिए चूर्णी सूत्रकार ने जो यह कहा कि जो मिथ्यात्व का संक्रामक है वह शेष 21 प्रकृतियों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है, सो इस कथन में कोई बाधा नहीं आती। आशय यह है कि उपशमना के विधानानुसार 21 प्रकृतियों का सर्वोपशम होता है। किंतु तीन दर्शन मोहनीय का उपशम हो जाने पर भी उनका यथासंभव संक्रम और अपकर्षण ये दोनों क्रियाएं होती रहती हैं।
अपकर्षण भी बताए?
हाँ,
ये द्वितीय स्थिति में ही होगा कि द्वितीय ने पहली स्थिति प्रथम स्थिति में तो है ही
अभी
नहीं,
इसका उदय ही नहीं है।
हाँ
द्वितीय स्थिति में ही रहेगी, अतः उक्त कथन बन जाता है। यथा संभव डाला ना उन्होंने, इस प्रकार मिथ्यात्व को विवक्षित करके यानी मिथ्यात्व को बता के संक्रामक है उसके साथ अन्य अन्य की क्या बात है वो बताया। तो मिथ्यात्व को विवक्षित करके शेष प्रकृतियों का ओघ से सन्निकर्ष बतलाकर अब सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों को प्रधान करके आगे का सूत्र कहते हैं। अभी भी आदेश नहीं बताएंगे, अभी जो सम्यक प्रकृति का संक्रामक है क्या वो मिथ्यात्व का संक्रामक हो सकता है?
नहीं,
वो सम्यक मिथ्यात्व का होगा कि नहीं होगा?
हाँ होगा।
होगा, इस तरह सोचना है हमको। उसकी बात आएगी अभी सूत्र में। एवं सन्नियासो कायवो, इस प्रकार शेष कर्मों का सन्निकर्ष करना चाहिए। इस प्रकार इसी पद्धति से शेष कर्मों के सन्निकर्ष का भी कथन करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है, सम्यक मिथ्यात्व का कौन है? सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी है। तो जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है वो मिथ्यात्व का संक्रामक होगा कि नहीं होगा?
होगा, होगा भी और नहीं भी।
जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है वो मिथ्यात्व का संक्रामक होगा कि नहीं होगा?
होगा भी और नहीं भी होगा।
हाँ, होगा भी और नहीं भी होगा, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक सम्यक दृष्टि भी है मिथ्या दृष्टि भी है। मिथ्या दृष्टि में वो मिथ्यात्व का संक्रामक नहीं है, और कहाँ नहीं है? सपना में, अभी उसकी उदयावली में जो प्रवेश कर चुका है मिथ्यात्व, तब सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चालू रहेगा, परंतु मिथ्यात्व का रुक जाएगा, सत्ता होते हुए भी उसका संक्रमण नहीं होगा। इस तरह से सोचना है हमें। और जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है वो सम्यक प्रकृति का संक्रामक है कि नहीं है?
दोनों,
बताओ कैसे?
सम्यक्त्व का संक्रामक तो बुद्धवेलना करता है, तभी दोनों का।
हाँ, हाँ।
और नहीं है तो सम्यक दृष्टि जीव है वो सम्यक्त्व का संक्रामक नहीं है।
हाँ, सम्यक्त्व का और कहाँ नहीं है?
सम्यक्त्व का संक्रामक नहीं है
यानी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है, हमने कहा ना सम्यक दृष्टि है तो सम्यक्त्व का संक्रामक नहीं है, और मिथ्या दृष्टि में दोनों की उद्वेलना होती है तो दोनों
सम्यक्त्व का संक्रमण पूरा हो गया है।
हाँ, जहाँ सम्यक्त्व का संक्रमण पूरा हुआ है और सत्ता इस प्रकृति की सत्ता है और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है
वहाँ पे,
परंतु सम्यक प्रकृति आवली में प्रवेश कर चुकी, उद्वेलना पूरी हुई ना, आवली में है उसकी सत्ता, तभी की बात करना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ये तो हमने कुछ सोच लिया है, अभी यहाँ क्या कहते देखेंगे। यानी हर एक प्रकृति पर सोचना है, ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि जो मिथ्यात्व का संक्रमण करता है वो अनंत अनुबंधी का करेगा कि वो तो हो चुकी बात उन्होंने बता चुके थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, देखो 66 पेज पर आए हम, 66 पर। अब इस सूत्र से सूचित होने वाले अर्थ का विवरण करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं। चुन्नी सूत्रकार ने तो ऐसे ही समझ लेना कह दिया, अब ऐसे थोड़े हम समझेंगे। तो उच्चारणा के अनुसार बताएंगे। यथा जो सम्यक्त्व का संक्रामक है, मिथ्या दृष्टि है ना, वह मिथ्यात्व का असंक्रामक है, वो तो नक्की है। सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 नौकषायों का नियम से संक्रामक है, क्योंकि इनका मिथ्या दृष्टि भी संक्रमण करते ही है। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का, सम्यक्त्व का जो संक्रामक है वो अनंतानुबंधी चतुष्क का कदाचित संक्रामक है कदाचित असंक्रामक है। लक्ष्मी जी आपको ये बताना है, उन्होंने तो उत्तर बता दिया, आपको डिराइव करना है। सम्यक प्रकृति का जो संक्रामक है वो अनंतानुबंधी का संक्रामक है, ये तो है, क्योंकि अनंतानुबंधी का संक्रमण मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, समय दृष्टि भी करते हैं। दूसरे ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या बताया है कि सम्यक प्रकृति का संक्रमण करने वाला अनंतानुबंधी का संक्रामक नहीं है। नहीं मालूम, प्रेरणा, प्रेरणा बेन, मंदा बेन बताएंगे। बहुत अच्छा, विसर्जना करके जो संयोजना की है
एक अवली काल तक
और जो मिथ्यात्व में आया है। नहीं, यहाँ दो ऑप्शन तो वहाँ हमने देखे थे कि सम्यक्त्व के मिथ्यात्व के साथ वाले थे, यानी अनंतानुबंधी के असंक्रामक कौन है उसके लिए दो ऑप्शन थे। अभी हम क्या देख रहे हैं, जो सम्यक प्रकृति का संक्रामक है यानी वो मिथ्या दृष्टि है, फिर भी मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अनंतानुबंधी का संक्रामक नहीं है, ये कब बनेगा?
संयोजना करेगा तो
संयोजना करने पर एक पहली बंधावली काल में। पहले जो हमने देखा तो मिथ्यात्व का संक्रामक है वो सम्यक दृष्टि है, फिर भी अनंतानुबंधी का संक्रामक नहीं है, वो संक्रामक है, तो वहाँ वो विसर्जना में आवली में प्रवेश किया है वो
एक आवली में, बस एक समय
यानी अनंतानुबंधी के असंक्रामक सम्यक दृष्टि भी है, कब? विसर्जना के आवली में प्रवेश करते तब,
मिथ्या दृष्टि भी,
और मिथ्या दृष्टि भी है जब संयोजना के पहले आवली होती है तब। इसलिए सम्यक प्रकृति के संक्रामक रहते हुए क्या अनंतानुबंधी के संक्रामक है कि नहीं है? तो है भी और नहीं भी है, तो कदाचित संक्रामक है कदाचित असंक्रामक है। विशेषण, सम्यक्त्व का संक्रम मिथ्यात्व में होता है किंतु वहां मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं होता, ये तो आसान है ना समझने लिए। अतः जो सम्यक्त्व का संक्रामक है वह मिथ्यात्व का असंक्रामक है, यह कहा है, ये तो बात स्पष्ट है। सम्यक मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का संक्रम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के होता है, अतः सम्यक्त्व के संक्रामक को उक्त प्रकृतियों का संक्रामक नियम से बतलाया है। देखो, सम्यक मिथ्यात्व में ये रूल नहीं बताएंगे हम, नियम वाला, क्यों? उसका संक्रमण पहले रुक जाता है। किसका? सम्यक प्रकृति का संक्रमण, वो असंक्रामक होता है, फिर भी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चलता रहता है। यानी सम्यक मिथ्यात्व में जब हम सन्निकर्ष लगाएंगे तो यही रूल नहीं होगा, परंतु जहाँ सम्यक्त्व की उद्वेलना चल रही है वहाँ सम्यक मिथ्यात्व की भी चल ही रही है, यानी वो आवली में प्रवेश कर जाए तो भी उसकी संक्रमण तो चल ही रहा है, सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व रूप से हो रहा है, ये एक बात हुई, नियम से बतलाया। यद्यपि अनंतानुबंधी चतुष्क का संक्रम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के होता है, तथापि जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है उसके मिथ्यात्व में आने पर एक आवली काल तक उनका संक्रम नहीं होता, अतः सम्यक्त्व के संक्रामक को अनंतानुबंधी चतुष्क का कदाचित संक्रामक और कदाचित असंक्रामक बतलाया है। ये कारण समझ में आई बात? तो ये सम्यक्त्व का संक्रामक बता दिया। अब जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है हमने पहले सोच ही लिया था, अभी पढ़ेंगे, उसके मिथ्यात्व का संक्रमण होगा कि नहीं होगा?
होगा,
क्योंकि वो तो सम्यक
दृष्टि है।
सम्यक्त्व का भी संक्रमण होगा क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क का, अब कहते कदाचित, ये दूसरी बात बता रहे, जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का कदाचित सत्व और कदाचित सत्व नहीं है। सत्व की बात बता दी, हम डिराइव करेंगे अभी इसको, हम सोचेंगे सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक कौन है? सम्यक दृष्टि है, अभी हम मिथ्यात्व की बात करेंगे, मिथ्यात्व का सत्व नहीं वाला, यानी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है परंतु मिथ्यात्व का सत्व ही नहीं है, कौन है? क्षपणा में जिसने मिथ्यात्व की क्षपणा पूरी की है और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है, अब सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है और सम्यक्त्व की सत्ता नहीं है,
उद्वेलना कर
उद्वेलना जिसकी पूरी हो चुकी है, आवली काल भी बीत चुका, उसकी सम्यक्त्व की सत्ता ही नहीं है, यानी वो सत्ता इसकी सत्ता वाला है। फिर अनंतानुबंधी चतुष्क का भी सत्व नहीं है, ऐसा भी हो सकता है नहीं?
हाँ।
कब होगा?
सपना में, जिससे भी संयोजना कर दी,
सपना में और
विसंयोजना भी कर दी।
अब यदि सत्व है तो पहले में सत्व होता भी है नहीं होता है कहाँ वो हमने देख लिया। अब यदि सत्व है तो उनका कदाचित संक्रामक है। अभी मिथ्यात्व के बारे में, जहाँ मिथ्यात्व का सत्व है और संक्रामक है तो सारे समय दृष्टि जो है औक्षमिक और वेदक वो तो संक्रामक है ही है। जहाँ समय मिथ्यात्व का भी संक्रमण चल रहा है और मिथ्यात्व का भी चल रहा है, परंतु कदाचित असंक्रामक है, ये कब होगा?
सही है।
हाँ, मिथ्यात्व का अवली में प्रवेश हो चुका है, क्षपणा में, तब सत्ता होते हुए भी असंक्रामक है। मिथ्यात्व के असंक्रामक। अब सम्यक तो प्रगटित करेंगे, यदि सम्यक मिथ्यात्व के होते हुए सम्यक प्रकृति की सत्ता है तो कदाचित संक्रामक होते हैं, तो मिथ्यात्व में जब रेगुलर उद्वेलना चल रही है, और कदाचित असंक्रामक होते हैं जब आवली में प्रवेश कर चुके हैं, तब उद्वेलना करते करते अंतिम आवली में प्रवेश कर चुका है, सत्ता होते हुए भी असंक्रामक है। अब अनंत अनुबंधी सत्व कहाँ नहीं है? तो विसंयोजना वाले के सत्व नहीं है, परंतु सम्यक मिथ्यात्व की तो संक्रामक है, फिर अनंत अनुबंधी के है ही नहीं है। हाँ, दोनों बार। कब?
सपना में भी होगा,
विसंयोजना के अंतिम आवली में भी होगा। सपना में कैसे?
सम्यक मिथ्यात्व तो संक्रमण हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे सत्ता है ही नहीं अनंत अनुबंधी की।
जिसकी सत्ता है उसकी बात चल रही है, सत्ता है और संक्रमण नहीं हो रहा है, ये कंडीशन हमने पूछी।
विसंयोजना में,
हाँ, यानी विसंयोजना में जब आवली में प्रवेश करता
एक है माइनस एक समय,
और संयोजन यानी मिथ्यात्व में जाने पर
एक
आवली काल तक। ख्याल में आई बात? अभी अभी पढ़ेंगे हम जो सम्यक मिथ्यात्व का, फिर पढ़ रही हूँ मैं 154 नंबर का, बात ख्याल में आई ना बात कि जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है उसके मिथ्यात्व सम्यक और अनंतानुबंधी चतुष्क का कदाचित सत्व है, कदाचित सत्व ही नहीं है। यदि सत्व है तो उनका कदाचित संक्रामक है, कदाचित असंक्रामक है, ये भी हमने सोच लिया। अब जो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है वो 12 कषाय और 9 कषायों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है, ये कब होगा? उपशम श्रेणी में, जैसे हमने मिथ्यात्व के बारे में देखा था, यहाँ भी समय मिथ्यात्व के भी संक्रमण चलता है। विशेषार्थ, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम करने वाले जिसने अनंतानुबंधी चतुष्की की विसंयोजना की है और जो दर्शन मुनि की क्षपणा करते हुए मिथ्यात्व का क्षय कर चुका है, उसके अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व का सत्व नहीं पाया जाता। यानी विसंयोजना के बाद तो अनंतानुबंधी का सत्व नहीं है और मिथ्यात्व के क्षय करने पर मिथ्यात्व का भी सत्व नहीं है। तथा जो सम्यक्त्व की उद्वेलना कर चुका है उसके भी सम्यक्त्व की सत्ता नहीं पाई जाती। किंतु इसके अतिरिक्त सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम करने वाले शेष सब जीवों के उक्त प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? सो यह जीव यानी सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम करने वाला जीव इन प्रकृतियों का, यानी मिथ्यात्व सम्यक और अनंतानुबंधी इन प्रकृतियों का
कदाचित
संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। जब सत्ता पाई जाती है तब दो ऑप्शन फिर बताए। मिथ्यात्व का मिथ्यात्व गुण स्थान में असंक्रामक है, यानी वहां सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम होते हुए भी मिथ्यात्व का तो असंक्रामक है, और सम्यक दृष्टि अवस्था में संक्रामक है। सम्यक तो कहा, सम्यक दृष्टि अवस्था में असंक्रामक है और मिथ्या तो गुणस्थान में संक्रामक है। ये तो सहज सरल है। अनंतानुबंधिका दो स्थलों में असंक्रामक है, शेष सब जगह संक्रामक है। एक तो जब विसर्जना करते हुए अनंतानुबंधी की सत्ता आवली प्रविष्ट हो जाती है, सत्ता आवली प्रविष्ट है ने उसकी सत्ता अभी नष्ट होने में आवली काल बाकी है, परंतु उसके निषेकों की तरफ देखेंगे तो एक समय का मावली प्रमाण निषेक है, परंतु अंतिम निषेक उसका काल कितना है तो एक आवली ऊपर वहां स्थित है, तब असंक्रामक है। और दूसरे जिसने अनंतानुबंधी की विसर्जना की है, ऐसा जीव जब मिथ्यात्व में जाता है तब एक आवली काल तक असंक्रामक है, यानी वहां नया बंध तो हो रहा है परंतु अनंत बंधावली काल में उसका संक्रमण नहीं होगा। इसी प्रकार 12 कषाय और 9 कषायों का उपशम होने के पूर्व संक्रामक है और उपशम होने पर असंक्रामक है, किंतु लोभ संज्वलन का अनुपूर्वी संक्रमण के प्रारंभ होने पर असंक्रामक है। एक बार अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होता है तो उसके लोभ का किसी में संक्रमण नहीं होगा, लोभ में अन्य प्रकृतियों का संक्रमण होगा। संज्वलन लोभ संबंधी इस विशेषता का अन्यत्र जहाँ कहीं उल्लेख न किया हो वहाँ भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए। एक बार वो पहले बता चुके थे तो कहते यहाँ उल्लेख नहीं भी है तो भी समझ लेना। अब तक हमने मिथ्यात्व के साथ सन्निकर्ष देखा, सम्यक प्रकृति के साथ देखा, सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामण के साथ देखा। अब जो अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रामक है, अभी एक एक को लिए ना, क्रोध के साथ क्या वो मान का माया का लोभ का होगा कि नहीं होगा, अप्रत्याख्यानावरण का होगा कि नहीं होगा, संज्वलन का होगा, इस तरह से हर एक के साथ लगाना, यानी अकेले अनंतानुबंधी क्रोध को छोड़कर बाकी 27 प्रकृतियों के साथ इसका क्या संबंध है संक्रामक का, उसकी बात चलेगी। तो जो अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रामक है वह मिथ्यात्व का कदाचित संक्रामक है और कदाचित वह संक्रामक है। ये ऐसा क्यों कहा मंदाबेन, आप कहेंगे अनंतानुबंधी का क्रोध का जो संक्रामक है वो मिथ्यात्व के लिए ऑप्शन बताया, सच्ची बात है। हाँ, अनंतानुबंधी का संक्रमण मिथ्यात्व भी है, समय दृष्टि के भी है, और
यहाँ पे समय दृष्टि की बात है।
नहीं नहीं, मिथ्यात्व का संक्रामक समय दृष्टि है, परंतु अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रामक मिथ्या दृष्टि है, परंतु वहाँ मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं है, मिथ्यात्व का असंक्रामक। अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रमण मिथ्यात्व गुणस्थान में चल रहा है परंतु वहाँ मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं है, ये बात बताना चाहते, यानी वहाँ असंक्रामक है। और जब वो समय दृष्टि होता है तो उसका भी संक्रमण चलता है, मिथ्यात्व का भी और अनंतानुबंधी का। तो हम बेस हमारा अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रमण करने वाले जीव के साथ अन्य की बात चल रही है, अभी अनंतानुबंधी का असंक्रामक की बात ही नहीं है। संक्रामक की बात तो हमारा क्राइटेरिया वही है, उसके साथ अन्य प्रकृतियों की पोजीशन देखेंगे। अब सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है और कदाचित नहीं है, यानी उनकी सत्ता ही है और नहीं भी है,
अनादि तो नहीं है,
अनादि मिथ्या दृष्टि के तो सत्ता ही नहीं है।
को भी पल्ले का संकल्प,
सादी को भी जब उसने उद्वेलना पूरी कर दी है तब भी उसकी सत्ता नहीं है। यदि है तो इनका कदाचित संक्रामक है, कदाचित वह संक्रामक है। अभी मुझे ये बताओ, प्रेरणा बिना आपको ट्राई करना है, हमने अश्विन भाई को अभी चुप बैठने को बोला। हाँ बहुत अच्छा, आप कहते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रामक है, तो जब तीसरे गुणस्थान में आता है तो अनंतानुबंधी का संक्रमण चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, फिर भी वहाँ सम्यक्त्व का संक्रमण नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का। अभी एक एक को एक साथ ले लो, दोनों को एक साथ मत लेना। अनंतानुबंधी का संक्रमण करने वाला ऐसा कौन सा है कि जो सम्यक्त्व का संक्रमण नहीं कर रहा? सम्यक्त्व का ये आसान है ना, सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि है, तीसरा गुणस्थान वाला है, दूसरा गुणस्थान वाला है, परंतु मूल में समय दृष्टि जीव सभी अनंतानुबंधी की संक्रामक है, परंतु वो सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं कर रहे। कोई भी समय दृष्टि जीव सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं करते, सत्ता है और संक्रमण नहीं करते। फिर दूसरे तीसरे की बात सोचना है तो सोच लेंगे, और दूसरे तीसरे की मुख्यतः इसमें लेना सम्यक मिथ्यात्व के बारे में, क्योंकि अनंतानुबंधी का संक्रमण चल रहा है। अब वो सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, दोनों ही सम्यक मिथ्यात्व का तो संक्रमण कर ही रहे, तो अनंतानुबंधी का हो रहा है परंतु सम्यक मिथ्यात्व का नहीं हो रहा है, ऐसा कब होगा? दूसरे में भी कैसी कंडीशन लगाएंगे? हाँ, वो तो बिना विषय योजना वाला आया हुआ, उसकी बात करेंगे हम।
यहाँ पे सम्यक मिथ्यात्व का जब उद्वेलना एक कावली काल में प्रविष्ट होता है तभी भी,
हाँ, तभी भी हम ले सकेंगे, जब वो उदयावली में अंतिम सत्ता है और उसके उद्वेलना के बाद आवली में प्रवेश करते हैं तब भी हम उसको ले लेंगे। या और एक सपना में अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है, प्रथम ऑप्शन सम्यक के पहले समय में, सम्यक मिथ्यात्व के वहां उसका संक्रमण नहीं है, ऐसे हम सोचेंगे, पढ़ा तो मैंने भी नहीं है। पहले समय में, हाँ ये आया था, वही आया हुआ ही मुझे याद आ गया। हाँ पहले उसी को पढ़ा था हमने।
तभी बहुत सो रहे थे।
देखो फिर पढ़ती हूँ मैं इसको। अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रामक है, वह मिथ्यात्व का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। ये तो आसान है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि हो तो असंक्रामक है, सम्यक दृष्टि संक्रामक है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है और कदाचित नहीं है, क्योंकि उसकी सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जो है वो बिना सत्ता वाला भी होगा। यदि है तो इनका कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। अभी हमने देखा ना कौन संक्रामक है और कौन असंक्रामक, किंतु अभी ये तीन की तो बात हो गई, मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व, किंतु 15 कषाय और 9 कषायों का नियम से संक्रामक है। ये 15 कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी की रिमेनिंग 3 और बाकी 12 कषाय और 9 कषाय, तो उनका तो नियम से संक्रामक है। मान आदि 3 अनंतानुबंधियों का इस प्रकार कथन करना चाहिए, यानी अनंतानुबंधी क्रोध लगाए उसके बदले मान रखो, माया रखो, लोभ रखो, उसको रखकर ऐसा ही कथन होगा उसका। विशेषण, अनंतानुबंधी का संक्रम मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के संभव है, किंतु मिथ्यात्व का संक्रम केवल सम्यक दृष्टि के ही होता है। अतः जो अनंतानुबंधी क्रोध का संक्रामक है वह मिथ्यात्व का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। ये तो बात समझ में आ गई। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है या जिस मिथ्या दृष्टि ने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी है उसके सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, शेष के है, यानी 26 प्रकृति वाला, तथा सासाधन और मिश्र गुणस्थान में तो इनका सद्भाव नियम से है, किंतु एक तो इन दोनों गुणस्थानों में दर्शन मुनि की प्रकृतियों का संक्रम नहीं होता, बात हमने देखी है, उसका संक्रम नहीं है, और दूसरे उद्वेलना के अंत में जब इनकी सत्ता आवली के भीतर प्रविष्ट हो जाती है तब इनका संक्रम नहीं होता, यानी सत्ता होते हुए भी संक्रम कहाँ नहीं होता उसकी बात कर रहे। अतः जो अनंतानुबंधी का संक्रामक है वह सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का कदाचित संक्रामक है और कदाचित संक्रामक नहीं है, यह कहा है। यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि सम्यक्त्व का संक्रम समय दृष्टि अवस्था में नहीं होता, शेष कथन सुगम है। अब ये प्रथम उपशम सम्यक्त्व वाली बात यहाँ नहीं लिखी है, तो प्रथम उपशम सम्यक्त्व के पहले समय में और वो भी कौन सी, वो उसकी जिसकी वो आवली में प्रवेश कर चुका है या जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके लिए लेना। यानी उसके लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो सोच कर बताना है।
26 की सत्ता वाला के भीतर
26 वाला लेना या जिसने आवली में प्रवेश कर चुका है ऐसे सत्ता वाला जीव लेना। अभी अनंतानुबंधी की बात हो गई, अब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का संक्रामक है, यानी ये 12 कषायों में से अभी अप्रत्याख्यानावरण लिया जो उसका संक्रामक है, उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व बराबर करना। लास्ट वाला क है ना, उसके बदले वो वो थोड़ा आगे लाइन आई, बाकी ठीक है। वैसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है और कदाचित नहीं है, तो कदाचित नहीं है मैं किसको लेना। हाँ, जिसकी क्षपणा हो चुकी है फिर भी अप्रत्याख्यान, ये बाकी तो है ना सारे उसके शायिक समय दृष्टि, उसके इसकी सत्ता नहीं है। अकेले अनंतानुबंधी लेना है तो जिसने विसंयोजना की है उसकी सत्ता नहीं है। अकेले सम्यक सम्यक मिथ्यात्व लेना है तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है या जिसने उद्वेलना पूरी की है उसको भी ले सकते हैं, और मात्र मिथ्यात्व का सत्व नहीं है उसके तो
सपना
में अकेले मिथ्यात्व का ही क्षय हो चुका है, उसको भी ले सकते।
सम्यक मिथ्यात्व का नष्ट किया उसका खाली सम्यक्त्व की सत्ता भी हो सकती है।
कहाँ पर?
यहाँ पे जो सपना कर रहा है वो तो पहले मिथ्यात्व नष्ट करेगा।
नहीं नहीं, इसकी सत्ता कदाचित है और कदाचित नहीं उसकी बात चल रही। हाँ, यानी कहाँ कहाँ हम उसको सोच सकते हैं। इनको इकट्ठा लेना है तो क्षायिक समय दृष्टि डायरेक्ट बता दो, और अकेले को अलग अलग लेना है तो
अलग
अलग अलग पोजिशन हो सकता है। यानी उसका अनंत सॉरी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का यहाँ लिया, उसका संक्रमण हो रहा है तो इन दर्शन मुनि 3 और अनंतानुबंधी का सत्व होगा भी और नहीं भी होगा। यदि है तो वो क्या है, संक्रामक है कि नहीं उसकी बात चलेगी। तो यदि है इनका कदाचित संक्रामक है कदाचित असंक्रामक है। अभी मिथ्यात्व के बारे में असंक्रामक कब कहेंगे? अप्रत्याख्यानावरण का संक्रमण चल रहा है और मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं हो रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव
पहले गुणस्थान में पहले गुण
मिथ्या दृष्टि तो है ही। अब क्षायिक में जो अवली में प्रवेश उसको तो बाद में सोचना ना, जो रेगुलर है उसको पहले सोचेंगे। क्षायिक करते हुए जब अवली में प्रवेश करता है तब तो सोचेंगे हम उसको, पर सारे मिथ्या दृष्टि जो अनंत उनकी संख्या उसको पहले लेंगे ना। तो कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है, बताए ना।
पहले दूसरे तीसरे तीनों गुण स्थान लेना है।
देखो अभी ऐसा लेना कि मिथ्यात्व की सत्ता है परंतु उसका संक्रमण नहीं कर रहा है,
तो पहले दूसरे
तीसरे गुण स्थानों में संक्रमण नहीं कर रहा है मिथ्यात्व, और जब वो क्षपणा में आवली में प्रवेश कर चुकता है तभी भी नहीं करेगा। एक बार एक एक प्रकृति को लेते हैं। अभी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का संक्रमण कर रहा है परंतु सम्यक्त्व का संक्रमण नहीं कर रहा है, मयंक भाई क्या कहेंगे? सम्यक प्रकृति का संक्रमण कब नहीं होता है? सभी समय दृष्टियों को।
और आवली
हाँ? चौथा तीसरा दूसरा,
चौथा तीसरा दूसरा भी लेना पड़ेगा ना,
वही तो
हाँ।
चार तीन दो,
चार
तीन दो, हाँ। और पहले गुणस्थान में भी लेंगे जब
सत्ता ही नहीं है तो वहाँ पे नहीं,
सत्ता की बात है
तो आवली में प्रवेश,
जब आवली में प्रवेश करता है उद्वेलना करते हुए
तो उसका भी संकल्प,
तो वहाँ भी उसको हम कहेंगे।
और सपना में भी जब आवली करने आवली में प्रविष्ट होता है तभी उसकी सपना संक्रमण नहीं है।
वहाँ संक्रमण का सवाल ही कहाँ है?
अच्छा, वहाँ संक्रमण हो ही नहीं है,
अकेली प्रकृति उसमें संक्रमण, सम्यक्त्व का संक्रमण तो उल्टा ही उद्वेलना में ही होता है, अन्य कोई प्रकृति आगे नहीं की जिसमें वो संक्रमित करे। तथापि अभी ये तो बात आई ना समझ में, इन अभी अनंतानुबंधी चतुष्कों के लिए नहीं लगाया हमने कि अप्रत्याख्यान क्रोध का संक्रामक है और अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है, ये कब होगा?
विसंयोजना
में होगा। और सत्ता है फिर भी संक्रामक है या संक्रामक नहीं है?
आवली में प्रविष्ट होने
वाले विसंयोजना
वाली
आवली
और
संयोजना वाली आवली, दोनों जगह लेना, क्योंकि अप्रत्याख्यान आवरण के दोनों जगह है, सम्य दृष्टि भी संक्रामक है, मिथ्या दृष्टि भी संक्रामक है, इसलिए वो दोनों ऑप्शन वहां लेना। तो ये सात प्रकृतियों के बारे में हमने देखा अभी। तथापि अप्रत्याख्यानावरण मान आदि दस कषायों का नियम से संक्रामक है, किंतु लोभ संज्वलन और नौ नौ कषायों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है।
यहाँ पे ये दस कषायों का नियम अप्रत्याख्यान क्रोध की बात चल रही है,
अभी हमने सात की बात, सात की बात बताई,
हाँ।
अब कितने रह गए?
अप्रत्याख्यान क्रोध छोड़ के बाकी का,
हाँ, अप्रत्याख्यान और क्रोध छोड़ के अप्रत्याख्यान मान आदि तीन,
हाँ, और प्रत्याख्यान और संज्वलन ग्यारह हो गए ना,
लोभ संज्वलन और नौ नौकशाओं को छोड़ दिया है,
हाँ, लोभ का भी नहीं होगा,
तो लोभ को हमने देखा ना अनुपुर भी होता है,
तभी लोभ का संक्रमण नहीं होता,
लोभ संज्वलन को छोड़ा है। यानी अप्रत्याख्यान वगैरह वो मान माया लोग तीन लिए, प्रत्याख्यान और उनके चारों लिए और संज्वलन के तीन लिए,
हाँ।
बात ख्याल में आई? दस कौन से? अप्रत्याख्यान और उनके एक की बात चल रही है क्रोध की, तो अप्रत्याख्यान और उनके तीन, प्रत्याख्यान और उनके चार और संज्वलन के तीन लोग के बिना। यानी वहां सत्ता है और असंक्रामक है, क्यों? वो अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होता है तब की बात है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण क्रोध का संक्रम करने वाले जीव के जानना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण ये जो आठ कषाय है उनकी जो अवस्थाएं होती है ऊपर श्रेणी वगैरह में, तो वो तो एक साथ होती रहती है। विशेषार्थ जिस जीव ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना और तीन दर्शन मुनियों का क्षय कर दिया है, उस अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के संक्रामक के ये सात प्रकृतियां नहीं पाई जाती, शेष के पाई जाती है। उनमें भी सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के सत्व के संबंध में और भी कई नियम हैं जिनका यथायोग्य पहले विवेचन किया ही है। यानी वो उद्वेलना जिसने पूरी कर दी है, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वो भी ले सकते हैं या अनादि मिथ्या दृष्टि भी ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए इन सात प्रकृतियों का सत्व रहने पर भी अवस्था विशेष में इनका संक्रम होता है और अवस्था विशेष में इनका संक्रम नहीं होता है। अवस्था विशेष यानी विवक्षित काल में उसका संक्रमण है, कभी कभी नहीं भी है। अतः जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का संक्रामक है वह इनका कदाचित संक्रामक है और कदाचित संक्रामक नहीं है, यह कहा है। वो भी हमने देख लिया कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। अंतरकरण करने के बाद अभी शेष कषायों की बात चलेगी, तो कहते हैं अंतरकरण करने के बाद अनुपूर्वी संक्रम चालू हो जाने से लोभ संज्वलन का संक्रम नहीं होता, उसके पहले तो हो रहा था, इसलिए संक्रामक है भी और नहीं भी कहा। अन्यत्र मिथ्यात्व अवस्था में कहो या सम्य दृष्टि था, नीचे के गुणस्थानों में कहो, जब तक वो अंतरकरण नहीं किया था अनिवृत्तिकरण में जाके, तो अंतरकरण करने के बाद अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होता है। तो अन्य कषाय तो क्रोध का मान, मान का माया, इस तरह से तो चलता है, परंतु लोभ का संक्रमण अन्य किसी में नहीं होता, तो इसलिए कहते हैं लोभ संज्वलन का संक्रम नहीं होता, उसकी सत्ता तो है परंतु संक्रमण नहीं है। और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उपशम होने के पूर्व ही नौ नौ कषायों का उपशम हो जाता है, ऐसा नियम है।
तो यहाँ पे नौ नौ कषाय और संज्वलन लोभ लिया दस में।
हाँ, अतः अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का संक्रम चालू रहते हुए भी उक्त दस प्रकृतियों का संक्रम होना रुक जाता है। क्या बताया, संज्वलन लोभ की तो बात ख्याल में आई, परंतु जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का संक्रामक है, संक्रामक है का अर्थ उसका भी उपशम नहीं हुआ है, तो उसका उपशम तो बाद में होगा, उसके पहले नौ नौ कषायों का उपशम होगा, इसलिए उसका सत्ता तो है परंतु संक्रम रुक गया, फिर भी इनका संक्रमण चल रहा है। इसी से यहाँ पर जो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का संक्रामक है वह उक्त प्रकृतियों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है, यह कहा है। परंतु शेष अप्रत्याख्यानावरण मान आदि दस कषायों का संक्रम अवश्य होता है। यह दस का नहीं होता, होता भी है नहीं भी होता, ये किसमें संज्वलन लोभ और नौ नौ कषाय, और अन्य दस में किसको लेना,
लोभ को छोड़ के संज्वलन।
हाँ, संज्वलन लोभ को छोड़ के बाकी, यानी बारह कषायों में से एक संज्वलन लोभ को छोड़ा और जिसके साथ कंपेयर कर रहे उसको भी छोड़ा ना, तो शेष दस बच गए, तो दस का संक्रमण अवश्य होता है। क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण क्रोध से पहले न तो इन दस प्रकृतियों का अभाव ही होता है और न उपशम ही होता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध की स्थिति अप्रत्याख्यानावरण क्रोध से मिलती जुलती है, अतः इन दोनों का कथन एक समान कहा है, क्योंकि इनका एक साथ वो जो कुछ श्रेणी में आठ कषायों का एक साथ उपशम होना, क्षय होना, ये एक साथ बातें बनती है। अब जो अप्रत्याख्यानावरण मान का संक्रामक है, पहले अप्रत्याख्यानावरण क्रोध की बात बताई थी, अभी अप्रत्याख्यानावरण मान का संक्रामक है, उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के समान है, तथापि यह सात कषायों का नियम से संक्रामक है। सात कहने अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, तथा चार कषाय और नौ नौ कषायों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित और संक्रामक है।
यहाँ पे सात कषायों का नियम से संक्रामक है, वहाँ पे सात कषाय कौन से लिए,
देखो ये नीचे विशेषार्थ में दिखेगा। अप्रत्याख्यानावरण मान के पहले अप्रत्याख्यानावरण माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण माया मान माया लोभ, तथा संज्वलन मान और माया, इन सात प्रकृतियों का उपशम नहीं होता, अतः इन प्रकृतियों का यह जीव नियम से संक्रामक है, यह कहा है। शेष कथन सुगम है। कौन कौन से अप्रत्याख्यानावरण मान के पहले प्रत्याख्यान माया लोग, प्रत्याख्यानावरण मान माया लोग और संज्वलन मान और माया, लोभ का तो होता ही नहीं है,
संज्वलन क्रोध को भी पहले उपशम,
यानी इनके सबके क्रोध पहले छोड़ दिए, क्रोध को छोड़कर बाकी का संक्रमण होता है। हाँ, शपक श्रेणी में भी उसका क्षय हो जाता है, इसका संक्रमण चलता है आगे, अनुपूर्वी संक्रमण चलता है, अन्य रूप से होता रहता है।
अच्छा जब तक संजलन लोक का बंद, अरे क्रोध का बंद है तभी सब उसका उपशम नहीं हुआ है, ऐसे ले सकते हैं।
हाँ देखो, पहले क्रोध का उपशम हो गया, फिर मान का होगा, फिर माया का होगा, फिर लोक का होगा। हाँ बंद भी है ना, तब तक इसका बंद रुक गया तो उसका उपशम संक्रमण भी रुक गया और तभी उसका उपशम हो जाता है। जिसका वेदक काल रुक गया उसके उसी का उपशम पहले हो गया ना। और वहां तो इनका उदय नहीं है फिर भी इनके, और इनका बंधन भी नहीं, इनका बंधन नहीं है फिर भी इनका संक्रमण तो है मान का। यानी आठ कषायों की बात है फिर भी क्रोध मान माया लोग उसमें भी उन्होंने क्रम लगाया उपशम होने का। अप्रत्याख्यानावरण देखो, पहले में पहले अप्रत्याख्यानावरण क्रोध लिया तो बाकी सब लिए थे, अकेले संज्वलन लोग को छोड़ा था। फिर जब मान का नंबर आया है और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध जैसे ही प्रत्याख्यानावरण क्रोध कह दिया बराबर, अभी क्या है, अभी मान को लिया है, अप्रत्याख्यान मान को लिया है
तो
और उसके साथ क्रोध वाले सब छोड़ दिए,
तीनों छोड़ दिए, चारों छोड़ दिए,
संज्वलन लोग को तो सर्वत्र छोड़ा। हाँ सभी क्रोध छोड़ देना ना, क्रोध सभी छोड़ देना,
क्रोध का बल
संज्वलन क्रोध को भी,
क्रोध को भी
छोड़ा
है क्योंकि क्रोध का बंधन रुक गया
है। जब क्रोध को उपशमित किया तो उस क्रोध का अभी संक्रमण भी रुक गया। देखो हमने क्या देखा था, सर्वोपशमनाय ने उसका संक्रमण भी रुक जाएगा। तो जहाँ क्रोध का उपशमित हुआ, सर्वोपशम हुआ, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन तीनों ही
क्रोध का
रुक गया, मान माया का रह गया, लोभ का भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उनका रखा, संज्वलन का नहीं लेना,
अनुपूर्वी संक्रमण
उसमें अनुपूर्वी में ले लेना।
आई थिंक उपशम साथ में होता है,
उपशम की बात है ना। यहाँ हमने क्या देखा, देखो अप्रत्याख्यान और मान का संक्रामक है,
अप्रत्याख्यान द्वारा माया और लोभ,
यह विशेषार्थ में बताया ना। अप्रत्याख्यान और मान के पहले अप्रत्याख्यान माया और लोभ वगैरह वगैरह का उपशम नहीं होता,
नहीं होता।
यानी जहाँ इसका मान होगा वहाँ पर प्रत्याख्यानावरण का भी मान,
मान
का भी मान सब एक साथ, बाकी के अभी उपशमित नहीं है,
खाली मान हो
आगे वाले उपशमित नहीं है। वो नहीं होता वो बात चुके ना, देखो क्या कहा, क्या रह गया उसको बताया। वो सब एक साथ लेना, यानी संज्वलन का नाम आगे आएगा। अभी तो हम प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मान माया की बात कर रहे हैं, क्रोध मान माया। हाँ ये जो संज्वलन की बात तो बाद में बताएंगे, अभी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान की बात बता रहे हैं।
यहाँ पे साथ में संज्वलन का भी मान और माया इन सात प्रकृति का उपशम नहीं होता। सो इन प्रकृतियों का ये जो नियम से संक्रामक है ऐसा क्यों कहा है, ये सात प्रकृति का संक्रामक है तो संज्वलन भी ले लिया है मान और माया, लोक को छोड़ दिया है क्योंकि
क्रोध को छोड़ा है पहले,
क्रोध का पहले हो गया और मान और माया लिया है, लोक का
तो छोड़ दिया, वही तो इसीलिए सात प्रकृतियां ली। देखो ये फिर मैं 157 पेज सॉरी पेज नहीं पॉइंट पर दी, जो अप्रत्याख्यानावरण मान का संक्रामक है उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के समान है, यानी उसकी सत्ता होगी भी नहीं भी होगी वो सब उसमें ले लेना। तथापि यह सात कषायों का नियम से संक्रामक है, तथा चार कषाय और नौ नौ कषायों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यान और मान का संक्रम करने वाले जीव के विषय में जानना चाहिए। देखो ऊपर ऊपर में क्या लिया हमने, 10 प्रकृतियों में किसको लिया था, लोभ संज्वलन और 9 कषाय।
यहाँ पे 4 कषाय में 3, अरे 4 3 क्रोध लेना।
देखो 7 कषायों का नियम से संक्रामक है।
हाँ।
जिनका संक्रामक है वो अप्रत्याख्यानावरण माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण मान माया लोभ और संज्वलन मान माया, ये 7 उनका नियम से संक्रामक है, ये बात बताई। तथा 4 कषाय और 9 कषायों का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। अब ये उदयावली में प्रवेश, आवली में प्रवेश करने वाले हैं क्या, वही लेने पड़ेंगे?
नहीं नहीं, 4 कषाय में तो चारों क्रोध, अच्छा चारों क्रोध को,
हाँ 4 क्रोध को ही लेना है।
हाँ 4 क्रोध को ही लेना है, ये बाकी के 7 के ऊपर बात आ गई, 12 में से एक का, एक की अपेक्षा बात हो रही है, बाकी का 7 का उन्होंने ऊपर बताया, अभी 4 के बता रहे हैं। तो 4 क्रोध और 9 कषाय, उसका संक्रामक है भी और नहीं भी है,
दोनों ले लिए।
हाँ।
9 कषायों का उपशम पहले होता है, वो बात सही है। देखो संक्रामक है कब कहेंगे, क्योंकि हम
नीचे के
केवल
में संक्रामक है,
नीचे के पहले गुणस्थान से ले लो ना।
हाँ, सभी जगह संक्रामक है,
बाकी सर्वत्र तो संक्रामक है। और संक्रामक नहीं है कब कहेंगे,
4 क्रोध
जब उपशमित है। हाँ। सकता है मगर संक्रमण रुक गया है, क्योंकि पहले उपशम हुआ है उनका, जिनका पहले उपशम हो चुका है उनकी सत्ता तो है परंतु संक्रमण नहीं हो रहा है। और नीचे के सभी गुणस्थानों में सर्वत्र संक्रमण हो रहा है, इसलिए उसको संक्रामक है भी और नहीं भी दोनों में लिया। नहीं भी है संक्रामक, नहीं है
अनंतानुबंधी, आगे बता दिया है। तो यहाँ पे 4 कषाय में 4 क्रोध लेना है,
चारों क्रोध ले लेना।
नहीं पर अनंतानुबंधी की बात तो अलग से बताई है।
देखो देखो 4 क्रोधों की बात लिए ना यहाँ पर,
नहीं अनंतानुबंधी के तो ऊपर बता,
अनंतानुबंधी की बात
तो यहाँ पे 3 क्रोध और ये संज्वलन लोप है, इसे लेना है। अनंतानुबंधी का तो अलग से बता ही दिया है उन्होंने।
हाँ 4 कषाय नहीं संज्वलन लोप को लेना ना इसमें।
हाँ, हाँ, 3 क्रोध और,
क्योंकि नीचे के गुणस्थानों में तो अनुपूर्वी के बाद उसका संक्रामक नहीं है, परंतु उसके पहले मिथ्या तो गुणस्थान से
उसका संक्रामक
के शुरू तक उसका तो संक्रामक है वो। तो 4 कषाय में 4 संज्वलन ले लो। कोना सा किसका, अप्रत्याख्यानावरण मान चल रहा है
तो अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, संज्वलन क्रोध और संज्वलन लोभ, वो 4 लेना है ना यहाँ पे। हाँ ऐसे होगा, उसका संक्रामक है भी और संक्रामक नहीं भी है, तो नहीं, मान नहीं, का नहीं। भी देख रहे हैं तो उसके साथ वो क्रोध का तो संक्रामक नहीं हो सकता है, जब क्रोध का उपशम हो गया सर्वोपशम ना, तो वहाँ पे
नीचे के गुणस्थानों में तो सभी का संक्रमण चल रहा है।
यहाँ पे
तो
ये जो 4 कषाय बताया है उनमें 3 क्रोध लेना है, क्योंकि अनंतानुबंधी की तो ऊपर बात आ गई है।
विशेषार्थ में देखो सात कषायों का नियम से संक्रामक है, ये बता दिया। तो नियम से किसका संक्रामक है, तो उसके बाद में उपशमित होने वालों का नियम से संक्रामक है, ये बात आ गई उसमें। अब 4 कषाय और 9 कषायों का कदाचित संक्रामक है, कदाचित तो असंक्रामक है।
नीचे के गुणस्थान में संक्रामक है सभी जगह।
हाँ सभी जगह है।
और असंक्रामक
और जिसका उपशम ऑलरेडी इसके पहले हुआ है,
तो 3 क्रोध का अनंत अनुबंधी का अलग बता दिया, अभी 3 क्रोध लेना है और संज्वलन।
3 क्रोध और संज्वलन, अनंत अनुबंधी के बता चुकी इसलिए। हाँ, इसी प्रकार प्रत्यय खनन मान का संक्रमण करने वाले जीव के विषय में।
नहीं, अरविंद भाई कुछ पूछ रहे।
देखो
क्या कौन
सा संज्वलन लोग
नहीं, मेरा कहना ऐसे अनंत अनुमति के तो ऊपर बात हो गई। हाँ, अभी तीन क्रोध बाकी रह गए, तो तीन क्रोध और संज्वलन लोप का यहाँ पे असंक्रामक भी हो सकता है, क्योंकि जो लोप क्रोध का उन्होंने उपशम ना कर दी,
वो तो बता दी ना।
हाँ, और लोप का यहाँ पे अनुपूर्वी संक्रमण का लोप
लोप का तो किसी का भी नहीं होगा। हाँ, देखो नीचे के गुण स्थानों में सब 25 का तो संक्रमण होता है, एक का होता तो बाकी सबका होगा, अन्य 24 के 24 का होगा। बात सही है, बस अभी यहाँ सत्ता होते हुए भी जो संक्रमण नहीं होता उसकी बात चल रही। तो ये दर्शन मुनि और अनंत अनुबंधी की तो बात हमने कहा नहीं होता, वो तो बात देख चुके। अभी हमें ऊपर के गुणस्थान में जो अनिवृत्तिकरण में अंतर के बाद जो वहाँ होती है सर्वोपशमना, उसकी बात चलेगी। तो नीचे के गुणस्थान अभी हम नौ कषायों की बात करेंगे। तो यहाँ क्रोध लो या मान लो अलग अलग ले लेंगे, पहले हम क्रोध को लेते हैं। तो क्रोध की उपशमना पहले होती है कि नौ कषायों की होती है, तो पहले नौ कषायों की होती है, तो उसकी सत्ता है परंतु संक्रमण नहीं हो रहा है, ये उपशम श्रेणी में बन सकता है। और नीचे के गुणस्थानों में उसका भी संक्रमण हो रहा है, यानी उसका जब संक्रमण चलता है क्रोध का, तब नौ कषायों का संक्रमण होगा भी या नहीं भी होगा, ये बात होती है। संज्वलन लोभ के बारे में भी ऐसा कहेंगे होगा भी या नहीं भी होगा, क्यों, नीचे के गुणस्थानों में तो होता है, परंतु एक बार अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होता है तो उसका नहीं होता, तो नहीं भी होता उसमें आ जाएगा। नौ कषायों के लिए उसकी उपशमना पहले होती है इसलिए नहीं भी होता में आया।
हाँ।
और संज्वलन लोभ में
उसका
अनुपूर्वी है इसलिए उसका नहीं भी होता उसमें आ गया, दोनों। अब ये तो क्रोध की बात हुई, अब मान की बात ले लेंगे। जब मान का उपशम चल रहा है उसके पहले क्रोध का उपशम पूरा हो चुका है। इसीलिए उसको बाद में ले लेंगे, उसको होगा भी नहीं भी होगा इसमें लिए। देखो अभी हम यहाँ फिर से देखते हैं, यहाँ जो लिखा है ना, मान का कदाचित है कदाचित नहीं होता,
भी होता है,
नहीं होता में ही ले लिया उसको।
हाँ।
यानी तभी संज्वलन क्रोध का भी उपशम हो गया है।
हाँ। जब भी क्रोध का उपशम होगा तो चारों का साथ में होगा। हाँ, अनंत अनुबंधी तो है ही नहीं,
अनंत अनुबंधी का तो है ही नहीं, उसकी विसर्जन
उसका तो पहले बता दिया। अभी तीन क्रोध का, खाली तीन की बात,
तीनों क्रोध का उपशम होगा, फिर तीनों मान का होगा,
तीनों माया का होगा और तीनों लोक का होगा। नहीं, लोक का पीछे
संक्रमण नहीं होगा, उसका उपशम होगा। देखो विशेषास्त्र में पढ़ती हूँ 157 का, अप्रत्याख्यानावरण मान के पहले अप्रत्याख्यानावरण माया और लोभ, प्रत्याख्यानावरण माया और लोभ, प्रत्याख्यानावरण मान माया और लोभ, संज्वलन मान और माया, इन सात प्रकृतियों का उपशम नहीं होता, अतः इन प्रकृतियों का यह जीव नियम से संक्रामक है यह कहा है। इसका नहीं होता यानी क्रोध का हो गया, ये बात आ गई ना, संज्वलन क्रोध का हो गया और लोभ का तो सवाल ही नहीं है। हाँ, उनका उपशम एक साथ, ऐसा अर्थ हो गया उसका। क्षपणा में तो हमने पहले क्षपणा की थी, पहले क्षपणा पूरी हो जाती है बाद में उनकी एक एक की होती है क्षपणा में। देखो मेरे ख्याल से वो संज्वलन मान रूप होकर कुछ उसका भी उपशम होता है, ऐसा कोई बात होती है वहां पर, अभी इतना याद नहीं है क्योंकि उपशम श्रेणी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं ना।
120 फीट, 120 पेज,
150 पेजेस,
150 पेज
शेष कथन सुगम है कहते हैं। अभी आगे माया का देखेंगे ना, उसमें माया मान को भी निकालेंगे।
हाँ, मान को भी निकाल देंगे चारों को। अनंतानंद नदी को निकाला है
वो ज्यादा क्लियर होगा।
हाँ।
जो अप्रत्याख्यानावरण माया का संक्रामक है, देखो ये अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण का संक्रमण एक साथ चलता है। यानी कहा वो ऊपर के अनिवृत्तिकरण में उनका जो उपशमना है संक्रमण है वो एक साथ चलता है। तो जो अप्रत्याख्यानावरण माया का संक्रामक है, अब नीचे गुण नीचे के गुण स्थानों में तो अन्य सभी प्रकृतियों का संक्रामक कहेंगे और उसके इन सात की सत्ता है भी नहीं भी है ऐसा भी कहेंगे, क्योंकि जो साइक समय दृष्टि है उसकी तो सत्ता ही नहीं है दर्शन मुनि तीन और अनंतानुबंधी की। तो कहते उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के समान है। यानी उसकी सत्ता है भी और नहीं भी है, और सत्ता है तो वो
संक्रामक भी है संक्रामक नहीं
है भी और नहीं भी। तथापि यह चार कषायों का नियम से संक्रामक है। ऊपर मान में क्या लिखा था, सात कषायों का नियम से संक्रामक है, और क्रोध में क्या लिखा था देखो, हाँ दस का है,
दस का है
वो प्रत्यक्षण मान आदि दस कषायों का नियम से संक्रामक है कहा। और संज्वलन लोभ और नौ कषायों का हुआ नहीं लिया था, कदाचित है और नहीं है मैं लिया। तो नौ नौ कषाय और लोभ, देखो लोभ का तो अनुपूर्वी होता है वो तो किसी में नहीं लेना, ना क्रोध में लेना मान में माया, और नौ नौ कषाय सबसे पहले उपशमित होते हैं, इसलिए सत्ता होते हुए भी असंक्रामक है वो सब जगह लेना। अभी यहाँ दस प्रकृतियों का तो है भी और नहीं भी चला, अब उसके आगे तीन क्रोध निकाल देना अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो अप्रत्याख्यानावरण मान में सात का नियम से संक्रामक कहा, अभी अप्रत्याख्यानावरण मान प्रत्याख्यानावरण मान और संज्वलन मान को निकालो तो अभी नियम से चार का संक्रामक कहेंगे। अरविंद यह संज्वलन यानी ये तीनों मान निकाल देना अप्रत्याख्यानावरण मान प्रत्याख्यानावरण मान संज्वलन मान। ऊपर क्या लिखा था, सात कषायों का नियम से संक्रामक है, देख से 157 पॉइंट में तीसरी लाइन, हाँ, और यहाँ चार कषायों का नियम से संक्रामक है।
अप्रत्याख्यानावरण माया की बात हो रही है तो प्रत्याख्यानावरण माया और लोभ
प्रत्याख्यानावरण माया लोभ,
हाँ, और संज्वलन माया खाली उसका तो लोभ का नहीं होगा वहाँ पे अनुपूर्वी संक्रमण चालू हो
वो तो पहले से हमने उसको नहीं लिया नहीं
हाँ, तो लिया चार में किसको लेना,
देखो सात में कौन से थे पहले सात की कंडीशन देखो सात में क्या क्या था,
प्रत्याख्यानावरण मान माया और लोभ,
प्रत्याख्यानावरण माया और लोभ लिए थे
हाँ।
प्रत्याख्यानावरण मान माया लोभ लिए थे और संज्वलन मान और माया लिए थे बराबर, ये सात थे। अभी हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं,
अप्रत्याख्यानावरण माया
अप्रत्याख्यानावरण माया,
तो प्रत्याख्यानावरण
माया का कोई सवाल नहीं है
हाँ।
तीनों ही मान गए इसमें से।
अच्छा सो यहाँ पे अप्रत्याख्यानावरण लोभ
देखो
प्रत्याख्यानावरण माया और लोभ
यहाँ नीचे लिखा है विशेषार्थ में अप्रत्याख्यानावरण माया से पहले अप्रत्याख्यानावरण लोभ प्रत्याख्यानावरण माया और लोभ
संज्वलन माया
और संज्वलन माया इन चार प्रकृतियों का उपशम नहीं होता
बराबर हो गया।
ये सभी माया एक साथ हो गए परंतु हम अप्रत्याख्यान और माया के संक्रामक के साथ अन्य की कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। फिर ऊपर का पॉइंट 158 जो अप्रत्याख्यानावरण माया का संक्रामक है उसके मिथ्यात्व तो समय वो तो पढ़ा था हमने बंगे ने उसकी सत्ता होगी या नहीं होगी तथापि यह चार कषायों का नियम से संक्रामक है। नियम से है नहीं इनका संक्रमण इसके पहले में इसका उपशम नहीं हुआ है संक्रमण नहीं उपशम पूरा नहीं है सर्वोपशमना इनकी बाद में होती है इसलिए इनको रखा है। कौन से माया ही लिया अभी माया और लोभी लेना है देखो अभी कौन सी जब अप्रत्याख्यानावरण माया की बात चल रही है तो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन ना क्रोध रहे और ना मान रहे छह को निकाल दिया बारह कषाय में से छह को निकाल दिया, छह बाकी है
उसमें से एक की बात, एक की अपेक्षा
में तो इसके तो एक के साथ कंपेयर करना नहीं, इसलिए उसको रखा रहे पांच,
पांच
उसमें से लोग को निकाल देना संगलन लोग को, तो रहे चार। अब इसके आगे जब लोग की बारी आ जाएगी तो क्या कहेंगे
वहाँ पे, दो का नियम से संक्रमण होगा
वहाँ चारों लोग रहेंगे, संज्वलन लोग को नहीं लेना है
हाँ, दो का नियम से संक्रमण होगा
और अन्य को भी वो उसके
वहाँ पे भी अनुपूर्व ही होगा
नहीं, मगर लोभ है तो वो किस में जाएगा संक्रमण होकर,
लोभ का आगे दिखना पड़ेगा
उसके लिए प्रत्येक अनावरण लोग
तो उसका विशेषास्त्र में दिया है अपने
कभी में तथा सात कषाय और नौ नौ कषायों का कदाचित संक्रामक है, नीचे से सभी गुणस्थानों में संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। सात कषाय यानी तीन क्रोध तीन मान और एक स्वयं, नहीं एक स्वयं नहीं वो लोभ संज्वलन। सात कषाय में तीन मान तीन क्रोध तीन मान और संज्वलन लोभ,
पिछले साल के दिया है ना मान माया लोभ और संज्वलन मार और माया,
ये कौन से रहते वो बताएं। कदाचित असंक्रामक क्योंकि इनका उपशम हो चुका है इसलिए, गड़बड़ घोटाला है सब।
नहीं गड़बड़ नहीं है, या इजी
नहीं गड़बड़ है नहीं आपको इजी लगता है, आप फास्ट सोचते हैं, सबको साथ में लेके चलना है ना। उपशम सैनी की अभी डिटेल्स याद नहीं है, इतने याद नहीं है, वैसे तो मोटी मोटी तौर की चीजें याद है मगर देखो क्षपक की प्रोसेसेस और उपशम के प्रोसेसेस अलग अलग है। क्षपक श्रेणी में तो वो तो संग्रह कृष्टियां होती है और क्रोध मान वगैरह वो तो एक दूसरे में रूप हो जाती है, इसमें कुछ अलग बात होती है उपशम श्रेणी में।
यहाँ पे इन शॉर्ट में तो इसी सूत्र अनंत अनुमति चार को तो पहले अलग से बता दिया, सो अभी बारह की बात चल रही है,
बारह
में एक की अपेक्षा ग्यारह का कंपैरिजन होगा
हाँ,
तो ग्यारह में से
डिवीजन में करते हैं लोग को निकाल दिया
हाँ, क्योंकि वो अनुपूर्व
तो रहेंगे दस
दस, अभी दस में से किनका संक्रमण हो रहा है किसका नहीं हो रहा है
तो पहले वाले के क्रोध के साथ अप्रत्याख्यान क्रोध के साथ दस का हो रहा है बताएंगे, जब मान का नंबर आया तो उसमें तीन को निकालो सात को हो रहा है, माया का नंबर है तो और तीन
और
निकालो चार रह गए
इसी तरह तो बराबर है ना।
अब बाद में और तीन निकालेंगे तो एक प्रत्येक है ना उनका रह गया 159 नंबर। जो जीव अप्रत्यक्ष अनावरण लोभ का संक्रम करता है वो आई बात,
ये हमने ये विशेष पढ़ा है अप्रत्यक्ष मार्ग
फिर पढ़ेंगे। देखो दोबारा पूरा पढ़ती हूँ
हाँ, पूरा पढ़ लेते।
जो अप्रत्यक्ष अनावरण माया का संक्रामक है उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का भंग अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध के समान है, यानी उनकी सत्ता होगी भी या नहीं भी होगी, होगी में लेना बाकी जीव और नहीं होगी में लेना क्षायिक समय दृष्टि। तथापि यह चार कषायों का नियम से संक्रामक है अप्रत्यक्ष अनावरण माया है, तो जो इसके बाद उपशमित होने वाली है वो तो नियम से है ही है,
अप्रत्यक्ष अनावरण लो प्रत्यक्ष
जो पहले चली गई है उसके लिए कहेंगे, चली गई नहीं जो पहले उपशमित हो गई है उसके लिए कहेंगे उसकी सत्ता होते हुए भी असंक्रामक है, और जो इसके बाद में उपशमित होने वाली है उसको कहेंगे वो उसका नियम से संक्रमण करने वाला है क्योंकि वो पश्चात इसके संक्रमित होगी। तो इसके लिए चार कषायों का नियम से संक्रामक है कहा, और जो सात कषाय में तीन क्रोध और तीन माया चले गए उसके संज्वलन के साथ, और लोग को तो हमेशा ही
अलग ही है,
अलग ही लिया है, इसलिए सात कषाय और नौ नौ कषायों का कदाचित संक्रामक है। कदाचित क्योंकि नीचे के गुणास्थानों में तो संक्रामक था, अब यहाँ आया है तो इनका उपशम हो चुका है, सर्वोपशमना इनकी हो चुकी है, इसलिए अभी सत्ता में होते हुए भी असंक्रामक है। जो पहले उपशमित हुए हैं और अभी माया का संक्रमण चल रहा है उसका उपशम अभी नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं उसके पहले जो उपशमित हुए हैं वो सत्ता में होते हुए भी असंक्रामक है। नीचे के सभी गुणस्थानों में संक्रामक है। अब ये हो गया सात कषाय नौ कुण का कदाचित संक्रामक कदाचित असंक्रामक। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण माया का संक्रम करने वाले जीव के विषय में जानना चाहिए। प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण का एक ही पोजीशन में एट ए टाइम होता है उनका उपशम। विशेषार्थ अप्रत्याख्यानावरण माया से पहले अप्रत्याख्यानावरण लोग यानी किस किस का नहीं होता है वो बता रहे हैं। प्रत्याख्यानावरण माया और लोभ, इसके माया के साथ कंपेयर करें ना, इसके माया के साथ जाएगा उसके पहले नहीं जाएगा, इसलिए उसको माया और लोभ तथा संज्वलन माया इन चार प्रकृतियों का उपशम नहीं होता। संज्वलन लोभ को तो हमने पहले से अलग निकाला है, उसका संक्रमण ही नहीं होता, अतः इन प्रकृतियों का यह जीव नियम से संक्रामक है यह कहा है। ये चार कषाय बताए यहाँ। अब आगे वाला पॉइंट, जो जीव अप्रत्याख्यानावरण लोभ का संक्रम करता है, अप्रत्याख्यानावरण लोभ का किसमें होगा? संज्वलन लोभ का नहीं होता, अप्रत्याख्यानावरण लोभ का किसमें होगा? संज्वलन लोभ में होगा। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण लोभ है वो संज्वलन लोभ रूप से हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जो अप्रत्याख्यानावरण लोभ का संक्रम करता है उसके तीन दर्शन मोहिनी और चार अनंतानुबंधियों का भंग अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के समान है। उसकी सत्ता होगी या नहीं भी होगी, यह प्रत्याख्यानावरण लोभ का नियम से संक्रामक है। बात ख्याल में है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण लोभ का संक्रमण हो रहा है किसमें? संज्वलन
लोभ में।
संज्वलन लोभ का नहीं हो रहा है परंतु उसमें सब बाकी हो रहे हैं। तथा 10 कषाय और 9 9 कषायों का 12 कषायों में से 10 कषाय लिए यहाँ पर, कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। नीचे के गुणस्थानों में तो संक्रामक था,
यहाँ पे नहीं,
अभी असंक्रामक है क्योंकि वे पहले उपशमित हुए और संज्वलन लोभ का संक्रमण होता नहीं है, इसलिए उसको असंक्रामक था। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण लोभ का संक्रम करने वाले जीव के विषय में भी जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही होते हैं। विशेषार्थ अप्रत्याख्यानावरण लोभ और प्रत्याख्यानावरण लोभ, इनका उपशम एक साथ होता है। संज्वलन लोभ का तो होता ही नहीं है, ये इनका उस रूप होता है जो है वो
संज्वलन रूप
हो रहा है। बाकी एक ही रहेगी ना प्रत्याख्यानावरण लोभ, तो चार में से फिर हमने तीन कम कर दिए
अभी एक,
तो एक रहेगी प्रत्याख्यानावरण लोभ। और प्रत्याख्यानावरण लोभ के लिए कहेंगे और प्रत्याख्यानावरण लोभ क्योंकि उनका एक साथ होता है उपशम, अतः एक का संक्रामक दूसरे का संक्रामक नियम से है यह कहा है। शेष कथन सुगम है।
हाँ वो सुगम बताए ना, वो थोड़ा पहले समझने में दिक्कत है।
उपशम श्रेणी के जो डिटेल्स है ना, कौन सा किसमें संक्रमण होता है, थोड़ा रिवाइज करेंगे तो और स्पष्ट होगा जल्दी। उसमें फर्क है। देखो अभी एक पॉइंट पढ़ते हैं। जो क्रोध संज्वलन का संक्रम करता है उसके मिथ्यात्व सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व बारह कषाय और नौ नौ कषाय, इनका सत्व कदाचित है और कदाचित नहीं है। बारह कषाय और नौ नौ कषायों का भी कदाचित सत्व है कदाचित नहीं कहा। बारह कषाय में किसको लेना?
और क्रोध संज्वलन का संक्रम करता है उसके भी
संज्वलन चार छोड़ कर
संज्वलन,
क्योंकि संज्वलन क्रोध का तो संक्रमण कर रहा है तो बारह नहीं, ऐसा कब होगा?
संज्वलन क्रोध का क्रोध मान रहा है
जो, वही तो इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, जो क्रोध संज्वलन का संक्रमण कर रहा है परंतु उसके बारह कषायों का सत्व ही नहीं है, का अर्थ क्या है?
अनंत अनुबंधी
क्षपणा कर चुका है,
क्षपणा
कर चुका है, नहीं समझे? क्षपक श्रेणी की बात है,
क्षपक श्रेणी की बात।
सत्व नहीं का अर्थ क्या है? अन्य का चारित्र मुनि का सत्व नहीं का अर्थ उसकी सत्ता नहीं है, का अर्थ उसने क्षपणा की। अनंतानुबंधी सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के बारे में सत्व नहीं कहते तब विसंजना हो सकती, उद्वेलना हो सकती है, परंतु ये अन्य जो आठ कषाय बीच वाले उसका सत्व नहीं का अर्थ क्या है?
क्षपण कर चुका
उसका सत्व, यानी नौ नौ कषाय और आठ कषाय इनका जिसने क्षपणा की है फिर भी क्रोध संज्वलन का संक्रमण कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना? तो उसकी सत्ता नहीं भी हो सकती, ये बताए क्षपक श्रेणी में, यानी सत्व कदाचित है, कदाचित नहीं है वो क्षपक श्रेणी में, और बाकी सर्वत्र है। यदि है तो, यदि है ना बाकी सर्वत्र, ये नीचे सर्वत्र, यदि है तो इनका कदाचित संक्रामक है कदाचित असंक्रामक है। अब है और असंक्रामक है वो तो मिथ्यात्व वगैरह उसकी तो बात हमने बहुत बार देख चुकी है, असंक्रामक की मिथ्यात्व का संक्रामक मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्त्व का असंक्रामक वो तो हमने बहुत बार देखी। अन्य जो नौ नौ कषाय वगैरह है उसका असंक्रामक है,
उसका पहले उपशम हो जाता है,
क्योंकि उसका पहले उपशम यानी उपशम श्रेणी में, कदाचित असंक्रामक है वो उपशम श्रेणी में, किंतु यह दो संज्वलनों का नियम से संक्रामक है
मान और माया का।
हाँ, यानी इसका अर्थ क्या है? इससे सिद्ध होता है जब क्रोध का उपशम होता है तो पहले अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का एक साथ होता है, क्योंकि कदाचित असंक्रामक कहा ना, तो उसका उपशम पहले हो चुका और क्रोध संज्वलन का संक्रमण कर रहा है, यानी पहले अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण का संक्रमण भी कर, वो उपशम कर चुका है, तो उपशमित है उसका संक्रम नहीं हो रहा है, फिर भी संज्वलन क्रोध का हो रहा है। आप ख्याल में क्यों ऐसा क्यों? उसका नवक समय
प्रबंध बाकी रहा,
परंतु नवक समय प्रबंध
में तो दो अवली माइनस दो समय लिए थे ना हमने,
नहीं
यहाँ पे क्रोध का बंद हो रहा है संज्वलन क्रोध का, वहाँ पे
उसका संक्रमण भी कर रहा है।
हाँ, तो यहाँ पे जो नया बंद हो रहा है उसका संक्रमण हो रहा है, क्रोध का मान रूप होगा ना,
मान रूप समय होगा, यानी पहले इसका अर्थ है आठ का तो पहले उपशम होगा, तो उपशमित है का अर्थ क्या? सत्ता है परंतु संक्रमण नहीं कर रहा, परंतु संज्वलन क्रोध का अभी भी कर रहा है, यानी उसके बाद क्रोध संज्वलन का संक्रमण डूब जाएगा, उपशम पूरा हो जाएगा, तब अप्रत्याख्यान वगैरह उसके मान की चर्चा आएगी। किंतु यह दो संज्वलनों का नियम से संक्रामक है, लोभ संज्वलन का कदाचित संक्रामक है कदाचित असंक्रामक है। कदाचित संक्रामक है नीचे की गुण स्थानों में सर्वत्र, और असंक्रामक है जब अनुपूर्वी संक्रमण शुरू होता है तब असंक्रामक कहेंगे। अरे समय हो गया, यहीं रुकते हैं,
ये
दोबारा 160 पॉइंट ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होलो। अरविंद भाई।